بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 54, 55 اور 56 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں محمد صدیق منشاوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله والله واسع عليم۔ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دھرم سے پھرے گا وہ جان لے کہ اسے ایشور کو کوئی ہانی نہیں ہوگی، کیونکہ بھوشیہ میں ایشور ایسے لوگوں کو لائے گا جنہیں وہ پسند کرتا ہوگا، اور وہ بھی ایشور کو پسند کرتے ہوں گے۔ وہ ایمان والوں کے سمکش نرم اور کافروں کے سمکش کڑے ہوں گے۔ وہ ایشور کے مارگ میں جہاد اور سنگھرش کریں گے تتھا کسی دھکار کرنے والے کی دھکار سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ایشور کی کرپا ہے جسے وہ جس کو چاہتا ہے پردان کرتا ہے، اور ایشور اتیانت ویاپک گیان والا اور جانکار ہے۔ ہے ایمان والو، تمہارا ابھیبھاوک تتھا سوامی کیول ایشور، اس کا پیغمبر، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکو کی استھتی میں زکات دیتے ہیں، اور جو کوئی ایشور، اس کے پیغمبر تتھا ایسے ایمان والوں کی ابھیبھاوکتا اور سوامتو کو سویکار کرے تو جان لو کہ نسندیہ ایشور کا گٹھی پربھتو پراپت کرنے والا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ شروتو، یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ برابر 9510 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ آج شنیوار ہے، فروردین کی 21، شابان کی 27 اور اپریل کی 10 تاریخ۔ پروگرام میں صدا کی بھانتی پہلے آپ سماچار سنیں گے، اس کے بعد انمول باتیں پیش ہوں گی، پھر آپ سنیں گے راجنیتک چرچا، جس کے بعد پیش ہوگا پروگرام نیا سویرا، اور سبھا کا انتم پروگرام ہے ایران بھرمڑ۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@wes.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ اور اب آپ وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی حسن روحانی نے دیش میں کورونا کی چوتھی لہر کے لیے برٹش ویریئنٹ کو مکھیہ روپ سے ذمہ دار بتایا ہے۔ اسلامی گنتنتر ایران کی پرمانو ارجا سنستھا کے پرمکھ نے بل دیا ہے کہ پابندیوں کے باوجود پرمانو پریوجنائیں جاری رہیں گی۔ امریکی نوسینا کے ایک جہاز کے بنا اجازت بھارت کے وشیش آرتھک سمندری شیتر میں داخل ہونے پر نئی دلی نے چنتا جتائی ہے۔ میانمار میں سینا کے ہاتھوں پردرشن کر رہے لوگوں کی ہتیا کے بیچ یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے میانمار میں نو فلائی زون کی مانگ اٹھی ہے۔ اور اب آپ مریم مہردادی اور محمد علی گومی سے وستار سے سماچار سنیے۔
راشٹرپتی ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ دیش میں کورونا کی چوتھی لہر کے لیے برٹش کورونا ویریئنٹ ذمہ دار ہے۔ انہوں نے شنیوار کو کورونا سے مقابلہ کرنے والے راشٹری آیوگ کے ساتھ بیٹھک میں کہا کہ برٹین کا کورونا ویریئنٹ ہی ایران میں کورونا کی چوتھی لہر کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ویریئنٹ خوزستان پرانت سے دیش میں پھیلا ہے، جو عراق کی سیما سے سٹا ہوا ہے۔ ایرانی راشٹرپتی کا کہنا تھا کہ کورونا کی تین لہریں گزر جانے کے بعد ہمارا پورا پریاس یہ تھا کہ دیش کو چوتھی لہر سے سرکشت رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کھیت کی بات ہے کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود آج ہم ایران میں کورونا کی چوتھی لہر کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ اس کے علاوہ دیش میں ورتمان سمے میں کورونا کے پھیلاؤ کے دوسرے کارک بھی ہیں، جیسے سواستھ نیموں پر دھیان دیے بغیر نوروز میں یاترا پر جانا اور دوسروں سے ملنا آدی۔
ودیش منترالے کے پروکتا نے امریکہ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بات چیت کو غیر ضروری بتایا۔ سعید خطیب زادے نے بل دیا کہ سبھی پابندیوں کے ختم ہونے اور جے سی پی او اے میں امریکہ کی واپسی سے پہلے واشنگٹن سے سیدھی یا انڈائریکٹ بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سی این این سے انٹرویو میں بل دیا، جے سی پی او اے میں امریکہ کی واپسی سے پہلے ایران وینا یا کسی اور جگہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بات چیت نہیں کرے گا۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ ایران کی نیتی بالکل صاف ہے اور ایران کے خلاف سبھی پابندیاں ہٹنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن سرکار عمل سے دکھائے نہ کہ کاغذ پر ٹرمپ کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ ودیش منترالے کے پروکتا نے کہا کہ بائیڈن سرکار میں کچھ لوگ جے سی پی او اے کا پالن کرنے کے بجائے ٹرمپ سرکار سے زیادہ ایران کے خلاف پابندیوں کی بات کر رہے ہیں۔
چین نے کہا ہے کہ امریکہ کو پہلے ایران کے خلاف سارے پرتیبند ہٹانے چاہیے۔ تسنیم نیوز کے مطابق چین کے ودیش منترالے کی اور سے یہ گھوشنا کی گئی کہ سب سے پہلے امریکہ ایران پر لگے سارے پرتیبندھوں کو ہٹائے، اس کے بعد ہی آگے کی بات ہو۔ چین کے ودیش منترالے کی پروکتا ہوا چننگ نے شکروار کو ٹویٹ کیا کہ امریکہ کو بنا کسی شرط کے پرمانو سمجھوتے میں واپس آنا چاہیے اور اس سے سمبندھت جتنے بھی پرتیبندھ اس نے ایران پر لگائے ہیں ان سب کو ہٹانا چاہیے۔
ایک امریکی ادھیکاری کا کہنا ہے کہ سارے پرتیبندھوں کو ہٹانے کی مانگ سے وارتا کھٹائی میں پڑ سکتی ہے۔ عربی بھاشا کے چینل العالم کے انوسار امریکی ودیش منترالے کے ایک ورشٹھ ادھیکاری نے پرمانو سمجھوتے سمبندھت وینا وارتا کو سارتھک بتایا ہے۔ ساتھ اس ادھیکاری کا کہنا ہے کہ ایران کی اور سے سارے پرتیبندھوں کو ہٹائے جانے کی لگاتار مانگ وارتا کو کھٹائی میں ڈال سکتی ہے۔
اسلامی گڑتنت ایران کی پرمانو ارجا سنستھا کے پرمکھ نے بل دیا ہے کہ پابندیوں کے باوجود پرمانو پریوجنائیں جاری رہیں گی۔ علی اکبر صالحی نے شنیوار کو کہا کہ اسلامی ایران کے دشمنوں کی انیائپورن پابندیوں سے پیدا ہوئی مشکلوں کے باوجود پرمانو تکنیک اور وگیان کی وبھن شاخاؤں کی پریوجنائیں پوری طاقت سے جاری ہیں۔ انہوں نے 15ویں پرمانو پرودیوگکی راشٹری دیوس پر پرمانو ارجا کے کھیتر میں کام کرنے پر دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ادیوگ، میڈیکل اور کھیتی کے کھیتر میں 133 اپلبدھیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ پرکریا نہیں رکے گی۔
ایران کے سشستر بلوں کے پیسیو ڈیفنس آرگنائزیشن کے پرمکھ نے کہا ہے کہ اب شترو کے پاس پرمانو شکتی سمپن ایران کو سویکار کرنے کے اترکت کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ایران کے سشستر بلوں کے پیسیو ڈیفنس آرگنائزیشن کے پرمکھ بریگیڈیئر جنرل غلام رضا جلالی نے راشٹریہ پرمانو تکنیک دیوس کے اوسر پر کہا کہ اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد سے ہی ایران کی شانتی پورن پرمانو گتیویدھیوں کا وشے دیش کی ودیش نیتی میں رہا ہے۔
امریکی نوسینا کا ایک جہاز بھارت کی اجازت کے بغیر اس کے وشیش آرتھک سمندری کھیتر ای زیڈ زیڈ میں داخل ہو گیا، جس پر بھارت نے چنتا جتائی ہے۔ اخبار اکنامک ٹائمز کے مطابق بھارت کے ودیش منترالے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی نوسینا کا ایک جلپوت جان پال جونز فارس کی کھاڑی اور ملکہ جلڈمرو کے مدھیے سے گزر رہا ہے اور نئی دلی کی اجازت کے بغیر امریکہ کی اس آواجاہی پر چنتا جتائی ہے اور نئی دلی نے انومتی کے بنا امریکہ کی اس آواجاہی پر چنتا جتائی ہے۔ امریکی نوسینا نے ابھی کچھ سمے پہلے اعلان کیا تھا کہ بھارت کی انومتی کے بنا اس کا ایک جہاز بھارت کے وشیش سمندری کھیتر میں گشت کرے گا۔ یاترے کر راشٹر سنگھ کے کنونشن کے مطابق دوسرے دیشوں کو بھارت کے وشیش کھیتر میں اس کی انومتی کے بنا گشت اور سین ابھیاس کرنے کی انومتی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بھارت نے امریکی نوسینا کے قدم پر آپتی جتائی ہے۔
میانمار میں سینا کے ہاتھوں پردرشن کر رہے لوگوں کی ہتیا کے بیچ یو این سیکیورٹی کونسل میں میانمار کے دوت قیام مویتون نے نو فلائی زون کی مانگ کی ہے۔ یانگون کے باہر باگو ڈویژن میں رات سے لے کر شنیوار کی صبح تک کم سے کم 60 ناگرک مارے گئے۔ میانمار کے دوت نے ایسی حالت میں یو این سے اپنے دیش کے اوپر نو فلائی زون کی مانگ کی ہے جب انتراشٹریہ سمودائے میانمار میں پرجاتنتر کو واپس لانے اور گھاتک دمن کو روکنے کے لیے سینے سرکار پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ امریکہ اور یوروپی دیشوں نے شکروار کی بیٹھک میں یو این سیکیورٹی کونسل سے کارروائی کی اپیل کی، جہاں اس سنکٹ پر دکشن ایشیائی شکھر سمیلن کی تیاری چل رہی تھی لیکن میانمار کا سینے نیتریتو اڈا ہوا ہے اور اس نے یو این کے دوت کو داخل ہونے سے منع کر دیا ہے۔
میڈیا سوتروں کے مطابق سعودی عرب صنعا کی فورسز کے ہاتھوں یمن کے مارب پرانت کی فتح کو روکنے اور اپنی ہار سے بچنے کے لیے نئی یوجنا لایا ہے۔ الاخبار کے مطابق یمن کے مارب میں سعودی فورسز کو بار بار ہو رہی ہار اور اس علاقے پر اپنا نینترن کم ہونے پر ریاض کی چنتا کے بیچ سعودی شاسن نے یمن کے معاملے میں سویڈن کے وشیش دوت پیٹر سمن بائے کو نئی یوجنا کے ساتھ صنعا بھیجا ہے۔ سویڈن کے وشیش دوت نے عمان میں انصار اللہ آندولن کی وارتاکار ٹیم سے اس پیشکش کے بارے میں بات چیت کی، لیکن یمن کی راشٹری ایکتا سرکار کو اسٹاک ہوم سہمتی کے ہوئے ناکام تجربے کے مدنظر انصار اللہ آندولن نے اس پہل کے کچھ انچھیدوں پر اعتراض کیا، خاص طور پر اس بات کو لے کر کہ سویڈن کے وشیش دوت کسی بھی انوچھید کے لاگو ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکے۔
لبنان کے سنچار مادھیموں میں یہ بات پرمکھتا سے ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کے کارن دیش میں نئی سرکار کے گٹھن میں ولمب ہوتا جا رہا ہے۔ لبنان کے البنا سماچار پتر نے جانکار سوتر کے حوالے سے لکھا ہے کہ دیش میں نئی سرکار کے گٹھن کا مدعا بہت ہی جٹیل ہے، جس کا مکھیہ کارن سعودی عرب کی نیتیاں ہیں۔
لبنان کی فوجی عدالت نے زائنی شاہ سن کے 3 جاسوس کو موت کی سزا سنائی ہے۔ ارنا کے مطابق شکروار کی رات کو لبنان کی فوجی عدالت نے ان 3 جاسوسوں کو اسرائیل کی جاسوسی تنتر کے لیے جاسوسی کرنے کا مجرم قرار دے کر موت کی سزا سنائی۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ 3 جاسوس 1999 میں سیدا میں حزب اللہ کے ادھیکاری علی حسن دیب کی ہتیا کی یوجنا بنانے اور اسے لاگو کرنے تتھا 2002 میں مسیطبہ علاقے میں فلسطینی ادھیکاری جہاد احمد جبرائیل کی ہتیا میں لپت پائے گئے۔
روس کے ودیش منترالے کی پروکتا نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس سے 715 ارب ڈالر کی مانگ کر کے بائیڈن نے بتا دیا کہ وہ روس سے کتنا ڈرتے ہیں۔ ماریا زخاروا نے شکروار کو اس بات کا الیکھ کیا کہ بائیڈن نے امریکی کانگریس سے 715 ارب ڈالر کے رکشا بجٹ کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام روس سے امریکہ کے بھے کو اسپشٹ کرتا ہے اور ثابت بھی کرتا ہے کہ روس کی آشنکا صحیح ہے۔
مصر کے پراتتوویدوں نے بتایا کہ کھدائی کے دوران اس کو ایسا شہر ملا جو کم سے کم 3000 سال پرانا ہے۔ مصر کے جانے مانے پراتتوید زاہی حواس نے بتایا کہ مصر میں کھوجا گیا یہ اب تک کا سب سے وشال پراچی نگر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نگر میں راجاؤں کی گھاٹی استھت ہے۔ اس پراچی نگر سے سونے کے آبھوشن، رنگین برتن، کچی مٹی کی اینٹیں اور برتن تتھا کچھ اور چیزیں ملی ہیں۔
چین نے علی بابا پر کسا شکنجہ، ایک آدھیکاری رویے کے کارن لگایا اب تک کا سب سے بڑا جرمانہ۔ چین میں بازار نیامک تنتر نے علی بابا کمپنی پر ایک آدھیکار ویرودھی نیموں کا الگھن اور بازار پر اپنی پکڑ کا دروپیوگ کرنے پر 2.75 ارب ڈالر کا جرمانہ لگایا ہے۔ یہ چین میں ایک آدھیکار کے سمرتھکوں کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا جرمانہ ہے۔
سعودی عرب میں 3 فوجیوں کو دشمن کے ساتھ کتھت سہیوگ کے الزام میں موت کی سزا دی گئی۔ سعودی عرب میں ان 3 فوجیوں کو کتھت روپ سے بڑی غداری اور دشمن کا ساتھ دینے پر موت کی سزا دی گئی۔ اور اسی کے ساتھ سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ انمول باتیں۔ شروتو، انمول باتیں کاریکرم کے تحت ہم الگ الگ وشیوں پر اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کے وچار آپ کو سناتے ہیں۔ آج ہم پرہیزگاری کے بارے میں ان کے کچھ وچار پیش کر رہے ہیں۔ پرہیزگاری کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ حرام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اچھے کھانے اور اچھے لباس سے بھی پرہیز کرتا ہے، وہ سندر جگہوں کی سیر میں بھی روچی نہیں رکھتا، اسے بھی پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ انسان اپنے جیون میں ظاہری ٹھاٹ باٹ اور سویدھائیں بھوگنے سے بچے، لیکن اس میں بھی سیما کا دھیان رکھے۔ مگر ایک پرہیزگاری سب سے بڑی ہے اور وہ ہے گناہ سے بچنا۔ کچھ لوگ ہیں جو مستحب کام کرتے ہیں لیکن واجب کام چھوڑ دیتے ہیں، مکروہ کہیں جانے والی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ईश्वर के सदाचारी बंदे खुद को हर प्रकार के बुरे और अनुचित कर्मों से दूर रखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुनाह से बचा जाए। जिन चीजों को ईश्वरीय धार्मिक नियमों में खुले रूप में गुनाह करार दिया गया है, उनसे परहेज किया जाए। हराम चीजों से परहेज करने से बढ़कर कोई परहेजगारी नहीं हो सकती। याद रखिए कि ये परहेजगारी सबसे महान है। अनफा की रवायत यही कहती है। इसमें बताया गया है कि यदि इंसान दूसरे बुरे और गैर जरूरी कामों से खुद को दूर रखता है तो ये अच्छी बात है और परहेजगारी है, लेकिन सबसे बड़ी परहेजगारी यह है कि इंसान गुनाह से बचे। पैगंबर इस्लाम से रवायत है कि सबसे दृढ़ संकल्प रखने वाला व्यक्ति वो है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे, इसलिए कि क्रोध इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है। क्रोध की स्थिति में इंसान अक्ल इस्तेमाल करना भूल जाता है, और जब इंसान अक्ल के नियंत्रण से निकल जाए तो उल्टे सीधे काम करता है। अतः यदि इंसान चाहता है कि सभी जरूरी आयामों का ध्यान रखे तो उसे चाहिए कि अपने क्रोध पर नियंत्रण करे। ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। जानी सैनिकों ने उन प्रदर्शनकारी फिलिस्तीनियों पर हमला किया जो जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट के बैते बजन क्षेत्र में अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध कर रहे थे। कॉलोनियों में रहने वाले जानियों ने इसराइली सैनिकों के समर्थन से इस क्षेत्र के बहुत से भागों पर कब्जा कर लिया है, परन्तु फिलिस्तीनियों का कहना है कि फिलिस्तीनी ध्वज ने हम सबको एकजुट कर रखा है और हम एक दिन अपनी मातृभूमि को आजाद करा लेंगे। ब्रिटेन के चार क्षेत्रों में से एक में यानी उत्तरी आयरलैंड में हिंसा की आग दोबारा भड़क गई है। हालिया एक सप्ताह के दौरान उत्तरी आयरलैंड में सरकार के समर्थकों और विरोधियों के मध्य होने वाली लड़ाई में अब तक दसियों लोग घायल हो गए और सरकारी संपत्तियों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। भारत के उपराष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में कहा है कि राज्य के लोग शांति चाहते हैं और किसी को भी कश्मीर के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और कश्मीर भारत का अटूट अंग है।
यंग पीपल आई ऑलवेज फील हैज टू बी मोटिवेटेड एडिक्वेटेड।
ये थे हमारी आज की चर्चा के विषय पर। आरम्भ करें फिलिस्तीन से। जायनी सैनिकों ने उन प्रदर्शनकारी फिलिस्तीनियों पर हमला किया जो जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट के बैते बजन क्षेत्र में अपनी जमीन पर अवैध कब्जा करने का विरोध कर रहे थे। कॉलोनियों में रहने वाले जायनियों ने इसराइली सैनिकों के समर्थन से इस क्षेत्र के बहुत से भागों पर कब्जा कर लिया है, परंतु फिलिस्तीनियों का कहना है कि फिलिस्तीनी ध्वज ने हम सबको एकजुट कर रखा है और हम एक दिन अपनी मातृभूमि को आजाद करा लेंगे और अतिग्रहणकारी समाप्त हो जाएंगे। खालिद सबरना की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही कायम
रिज़वी।
हुजूम अनीफ,
ज़ायोनी सैनिकों ने उन प्रदर्शनकारी फिलिस्तीनियों पर हमला किया जो जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट के बैत बजन क्षेत्र में अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध कर रहे थे। कॉलोनी वासियों ने ज़ायोनी सैनिकों के समर्थन से इस क्षेत्र के बहुत से भाग पर कब्जा कर रखा है और आए दिन वे फिलिस्तीनियों को परेशान करते हैं। ज़ायोनी सैनिकों ने अभूतपूर्व ढंग से फिलिस्तीनियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दमन किया। हमारा नारा एक फिलिस्तीनी झंडा है जिसने सबको एकजुट किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एकता से हम जरूर विजयी होंगे और इस पर कब्जा करने वाले अतिग्रहणकारी समाप्त हो जाएंगे और हमारी जमीन आजाद होकर रहेगी। इन्हीं प्रदर्शनों के साथ ही जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट और पूर्वी बैतुल मुकद्दस के विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां निकाली गईं। फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकालने के लिए ज़ायोनी सैनिक उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और उनके स्रोत को बंद कर रहे हैं ताकि वो यहां से चले जाएं।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ज़ायोनी सैनिकों ने शांतिपूर्ण फिलिस्तीनियों के प्रदर्शन पर आंसू गैस और गोलियों से हमले किए। फिलिस्तीनी इस यकीन के साथ ज़ायोनी आतंकवादियों के मुकाबले में डटे हुए हैं कि ये उन्हीं की जमीन है और उन्हीं को इसकी रक्षा करनी है। फिलिस्तीन से IRIB के लिए खालिद सबरना की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
ब्रिटेन के चार क्षेत्रों में से एक में यानी उत्तरी आयरलैंड में हिंसा की आग दोबारा भड़क गई है। हालिया एक सप्ताह के दौरान उत्तरी आयरलैंड में सरकार के समर्थकों और विरोधियों के मध्य होने वाली झड़पों में अब तक दसियों लोग घायल हो गए और सरकारी संपत्तियों और गाड़ियों में आग लगा दी गई और घोषणा की गई है कि 75 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मुश्तबा कासिम जादे की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही मोहम्मद अली।
ब्रिटेन के चार क्षेत्रों में से एक उत्तरी आयरलैंड में एक बार फिर 30 वर्षीय लड़ाई की दबी हुई चिंगारी दोबारा फूट पड़ी है। आयरलैंड में 3 दशकों के बाद जो लड़ाई व हिंसा बंद हुई थी, जिसमें 50,000 लोग हताहत व घायल हुए थे और 23 साल पहले गुड फ्राइडे नाम से होने वाले समझौते के बाद विदित रूप से शांत हो गई थी, उस जंग की चिंगारी दोबारा फूट पड़ी है। हालिया एक सप्ताह के दौरान उत्तरी आयरलैंड में सरकार के समर्थकों और विरोधियों के मध्य होने वाली लड़ाई की आग में अब तक दसियों लोग घायल हो गए और सरकारी संपत्तियों और गाड़ियों में आग लगा दी गई और घोषणा की गई है कि 75 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ब्रेग्जिट, 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 यह सरकार का नारा था और हमेशा बल देकर कहती थी कि यूरोपीय संघ से निकलने के बाद इस देश की स्थिति बेहतर हो जाएगी और इस समय उसे नाकामी का सामना है और देश की एकजुटता व संप्रभुता गंभीर रूप से खतरे में है। ब्रिटेन में महारानी के पति फिलिप की मौत इस बात का कारण बनी है कि इस देश के संचार माध्यम एक बार फिर फिलिप की मौत पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। यह उस हालत में है जब उत्तरी आयरलैंड में शाही परिवार के समर्थकों और विरोधियों के मध्य लड़ाई भड़क गई है और ये ऐसा विषय है जिस पर ब्रिटेन के संचार माध्यम ब्रिटेन की महारानी के पति की मौत की खबर को कवरेज देने को प्राथमिकता दे रहे हैं। लंदन से IRIB के लिए मुजतबा कासिम जादे की रिपोर्ट।
भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जम्मू कश्मीर में कहा है कि राज्य के लोग शांति चाहते हैं और किसी को भी कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और कश्मीर भारत का अटूट अंग है। वेंकैया नायडू ने कहा कि कश्मीर में बहुत समस्याएं हैं, परंतु भारत ने उनके समाधान के लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और किसी भी देश को कश्मीर के मामले में बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी कश्मीर समस्या के हवाले से बातें करते हैं उन्हें ये हक हासिल नहीं है। जम्मू में एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसे कई देश हैं जो यहाँ शांति में बाधा डालने के प्रयासों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत इसमें सक्षम है कि वो हर एक स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और किसी को भी इसमें बात करने की अनुमति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, परंतु उनके भाषण में साफ तौर पर ऐसा दिख रहा था कि वो पाकिस्तान को ऐसा कह रहे थे। इस बीच श्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि कश्मीर में बेरोजगारी के खात्मे के लिए बहुत सारे समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत ने एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवकों से भी आह्वान किया कि वो जम्मू कश्मीर की शांति में अपना सहयोग दें।
यंग पीपल आई ऑलवेज फील हैज टू बी मोटिवेटेड एडिक्वेटली ट्रेन्ड एंड बी फिट एंड हेल्दी that will make the nation fit. Skill development and quality education are crucial development accelerators. That's why the Prime Minister, after he took over, he started a skill development ministry, full-fledged ministry. Because we in India, our children, they have some inherent skills. What is required is they have to be upgraded according to the demand, according to the changing times. So skill upgradation and training and development is very much required. We as a nation must focus on them and work consistently to enhance access to education and improve the quality of education. This is the underlying theme of the new National Education Policy 2020. I am happy that considerable progress has been achieved over the years in our country with reforms in higher education, the establishment of new education institutes, development of ranking framework and ease of FDI in education. I am hopeful that with the implementation of the comprehensive visionary education policy, education in India can truly become holistic, child-centered and globally competitive. Sisters and brothers, in addition to the above initiatives, we must push harder to make our higher education more in line with the realities of the world. Industry-institute linkages must be further strengthened. Only through solving real-world problems can the students become adept at the fundamental of their subjects. Our industry will greatly benefit too from the fresh perspectives young minds can offer. Our education institutions too have to be quick on their feet to anticipate the future trends that might evolve as the nation recovers from the pandemic. The world of learning and the world of work are changing very rapidly, as I told you. And institutes such as yours need to be over alert, ever agile. You should be able to adapt, evolve and respond to situations.
इधर जम्मू कश्मीर में कोविड-19 का कहर जारी है और पिछले 24 घंटों के बीच तकरीबन 850 के निकट व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, जबकि 4 व्यक्तियों की मौत भी वाकई हुई है। जम्मू कश्मीर में हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बार फिर कहा है कि जो स्थिति पिछले कई दिवस से पाई जा रही है वो इंतहाई गंभीर है। सरकारी तौर पर एक नए अस्पताल को भी कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
यह तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा ईरान भ्रमण पर। उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम नया सवेरा।
नया सवेरा।
दोस्तों, कार्यक्रम नया सवेरा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद अली गुमी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम हन्ना कालबोरन के बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों, इस्लाम का मानना है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी है। ये लोगों के बीच ही पल बढ़कर जिंदगी गुजारता है। मनुष्य का आरंभ और अंत दोनों ही लोगों के बीच होता है। यही कारण है कि इस्लाम अपने मानने वालों को समाज में सक्रिय भूमिका अदा करने का आह्वान करता है। मुसलमान धर्मगुरु इस बात को अपने भाषणों और अपने लेखों में पेश करते रहते हैं।
इस्लामी शिक्षाओं के हिसाब से मुसलमान को कभी भी लोगों से अलग होकर एकांतवास में जाकर जीवन नहीं गुजारना चाहिए। एकांतवास में जाकर जीवन गुजारने को इस्लाम में हराम या वर्जित बताया गया है। इस्लाम की बहुत सी उपासनाओं का संबंध भी समाज से है, जैसे जमात से नमाज, जुम्मे की नमाज, हज और इसी प्रकार की अन्य कई दूसरी उपासनाएं। संसार में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो विभिन्न समस्याओं के कारण या लोगों के बारे में गलत सोच के कारण समाज से दूर हो जाते हैं।
इस प्रकार के लोग धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में लोगों में अवसाद या मायूसी जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। इसी प्रकार के लोगों में एक हन्ना कालबोरन भी हैं। उनका संबंध ब्रिटेन से है। कई प्रकार की समस्याओं में ग्रस्त होने के बाद उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया था। अगर उनको इस्लाम का सहारा न मिलता तो अब तक वे आत्महत्या कर चुकी होती।
जी हाँ दोस्तों, हन्ना का जन्म ब्रिटेन के एक ईसाई परिवार में हुआ था। वे अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूल जाया करती थीं। हन्ना और उनकी बहन के नेचर में बहुत अंतर था। उसकी बहन समाजी थी, लोगों के साथ मिलजुल कर रहती थी। क्लास में उसकी कई सहेलियाँ थीं। उसके चारों ओर हर समय उसकी सहेलियों की भीड़ लगी रहती थी। हालाँकि हन्ना अपनी बहन के बिल्कुल विपरीत एकांत प्रिय थी। वो लोगों से बहुत कम ही मिलती थी। इस प्रकार से दोनों बहनों के बीच नेचर के हिसाब से खुला विरोधाभास पाया जाता था।
हन्ना कहती हैं कि स्कूल के अधिकांश बच्चे मेरी बहन के दोस्त थे, जबकि मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं शर्मीले स्वभाव की थी और अकेले रहना पसंद करती थी। स्कूल के बहुत से बच्चे मेरा मजाक भी उड़ाते और मुझको लिफ्ट नहीं देते थे। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, मेरे लिए स्कूल जाना कठिन होता जा रहा था। ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे अकेलापन पसंद करते हैं और अलग थलग रहते हैं, दूसरे बच्चे जहां उसका मजाक उड़ाते वहीं पर उससे जोर जबरदस्ती भी करते हैं। हन्ना ने किसी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वो किसी नौकरी की तलाश में थी।
कुछ दिनों तक नौकरी ढूंढने के बाद उसे एक किंडरगार्टन में नौकरी मिल गई। वे कहती हैं कि नया काम मेरे लिए स्कूल जाने से भी अधिक कठिन सिद्ध हुआ। स्कूल में तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, यहाँ पर भी ऐसा ही रहा। इस वजह से हन्ना बहुत परेशान रहा करती थी। उसके पास कोई अपनी बात कहने वाला नहीं था। वो अपने आप को अकेला और बेसहारा समझती थी।
दूसरी ओर वो अपने मन की बात हर एक से कहना नहीं चाहती थी। हालांकि उसके मन में बहुत सी ऐसी बातें थीं जो वो दूसरों के साथ शेयर कर सकती थी। अब उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो हर रोज खुद को अधिक अकेला समझने लगी थी। वो सोच रही थी कि क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। हन्ना का मानना था कि खुदकुशी करके मुझको सारी मुश्किलों से मुक्ति मिल जाएगी। अब हन्ना के मन में हमेशा ही खुदकुशी की बात रहने लगी थी। वो केवल अपने काम के लिए ही घर से निकलती और काम से वापस आने के बाद किसी से मिलना जुलना नहीं रखती थी।
इस्लाम में आत्महत्या या खुदकुशी को हराम के साथ ही महापाप बताया गया है। इस्लामी शिक्षाओं के हिसाब से मनुष्य का जीवन ईश्वर की देन है, जिसकी सुरक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। अपने जीवन में मनुष्य को दुख और सुख दोनों का सामना करना पड़ता है। न ही सुख सदा रहने वाला है और न ही दुख। इसलिए कहा गया है कि इंसान की जिंदगी में चाहे कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, एक दिन उसको समाप्त होना ही है। अतः मुश्किलों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। पवित्र कुरान में कहा गया है कि जिसने भी आत्महत्या की उसने वास्तव में एक हत्या की है जो स्वयं उसकी है। ऐसे में प्रलय में उसको इसका हिसाब देना और दर्दनाक यातनाओं से गुजरना होगा।
बेबीसिटर से हन्ना की नौकरी समाप्त हो गई। अब उसने एक अस्पताल में काम करना शुरू किया। यहाँ पर उसने नर्सिंग का काम किया। अस्पताल में उसे एक हैंडीकैप या विकलांग की सेवा करने का काम दिया गया। विकलांग की सेवा करने से हन्ना के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होना आरंभ हुए। कहते हैं कि अगर मनुष्य के जीवन में कोई लक्ष्य हो और वह उसको पूरा करने का प्रयास करे तो फिर ऐसा इंसान सफलता की ओर बढ़ सकता है या कम से कम मानसिक समस्या से मुक्ति पा सकता है।
नई नौकरी के बाद हन्ना के भीतर भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपना अधिक समय विकलांगों की सेवा में गुजारना आरंभ कर दिया। इस दौरान उसके मन में नकारात्मक विचार नहीं आते थे और वो चिंता मुक्त रहती थी। इस तरह से हन्ना नकारात्मक सोच से दूर होती जा रही थी। जिस विकलांग की सेवा हन्ना कुलबुरंग कर रही थी उसका संबंध एक मुसलमान परिवार से था। जिस बच्चे की सेवा हन्ना कर रही थी उसकी माता अधिकतर कमरे में खामोश बैठकर कुछ पढ़ती थी और कभी कभी सीधे खड़े होकर झुकती और फिर जमीन पर माथा टेकती और फिर उठ जाती। इस प्रकार से वो दिन में कई बार ऐसा करती थी।
हन्ना इस बारे में जानने के लिए उत्सुक थी कि वो महिला क्या करती है। जब विकलांग की माता ने उसे इस बारे में बताया तो हन्ना की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई। अब वो खाली समय में आकर उस महिला से और बातें करने लगी। इस प्रकार से उसे धीरे धीरे इस्लाम के बारे में जानकारी मिलती गई। हन्ना कहती है कि एक बार जब मैं अस्पताल पहुंची तो देखा कि वो महिला कुछ सुनकर रो रही है। जब मैंने उसे ऐसा करते देखा तो पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या सुन रही हो, तो उसने बताया कि मैं नौहा सुन रही हूँ।
हन्ना ने पूछा ये क्या है और इसका अनुवाद आप मुझे सुनवाइए। जब मैंने उस नोहे का अनुवाद सुना तो मुझे भी रोना आया। मैंने उससे पूछा कि ये नोहा आप क्यों सुनती हैं, तो उन्होंने बताया कि मुहर्रम आ चुका है और मैं अपने बेटे की वजह से यहाँ से मजलिस करने जा नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर बैठकर मैं मजलिस और नोहे सुनती रहती हूँ। हन्ना को मजलिस, नोहा और मुहर्रम ने बहुत प्रभावित किया। अब वो इस बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए वो प्रतिदिन विकलांग की माँ से मुहर्रम के बारे में नई नई चीज़ें सुनती थी। वो कर्बला की घटना और इमाम हुसैन से बहुत प्रभावित हुई।
जब हन्ना को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छोटी बहन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर पड़ने वाली परेशानियों का पता चला तो ये सुनकर हन्ना को बहुत दुख हुआ। उसको हज़रत ज़ैनब के धैर्य एवं ढारस ने बहुत प्रभावित किया। अब हन्ना सोच रही थी कि जीवन में आने वाली समस्याओं का डटकर मुकाबला किया जा सकता है और इसके लिए उसने हजरत ज़ैनब को अपना आदर्श बनाया।
उसने इससे पहले तक की किसी ऐसी महिला के बारे में नहीं सुना था जिसने अपने जीवन में इतनी अधिक कठिनाइयां सहन की हों और फिर भी हिम्मत न हारी। अब उसे पता चल गया था कि वो संसार में अकेली नहीं है और वास्तव में कोई ऐसा है जो उसकी सुनने वाला है, जो हमारी बातों को सुनता और हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम है। हन्ना कहती हैं कि जब हजरत ज़ैनब ने इतनी अधिक परेशानियों के बावजूद धैर्य से काम लिया और वे हमेशा अड़िग रहीं, तो फिर मेरे साथ तो कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है, मैं अपनी मुश्किलों का मुकाबला करने में सक्षम हूँ।
इस प्रकार से हन्ना ने खुदकुशी का विचार अपने मन से निकाल दिया और विकलांग बच्चे की माँ से मिलकर उसने उसी के धर्म अर्थात इस्लाम को स्वीकार कर लिया। हन्ना कहती है कि मैंने मुसलमान विकलांग बच्चे की माँ से बहुत कुछ सीखा और मेरे लिए ये बात साबित हो गई कि इस्लाम को स्वीकार करके मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती हूँ। वास्तव में ऐसा ही हुआ और अब मैं मुसलमान बनने के बाद बहुत खुश हूँ। मेरे भीतर पाई जाने वाली नकारात्मक विचारधारा अब समाप्त हो गई है और इस्लाम को अपनाकर अब मैं एक सामान्य जीवन गुजार रही हूँ। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाज़त दें।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ ایران بھرمڑ۔
دوستو، کاریکرم ایران بھرمڑ کے کرنے کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مردادی اور محمد مدی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج ہم ایران کے گیلان پرانت کے بارے میں چرچا کریں گے۔
ایران کے اتری چھیتر میں پھیلی پرکرتی کی سندرتا کو دیکھ کر منش منتر مگدھ ہو جاتا ہے۔ یہاں کی سندرتا دیکھنے یوگی ہے۔ ایران کے رہنے والے اپنے دیش کے اتری بھاگ میں گھومنے کے لیے اکثر جاتے رہتے ہیں۔ پورے سال یہاں پر پریٹکوں کی بھیڑ دکھائی دیتی ہے۔ ایران کے اتر میں بسے پرانتوں میں سے ایک گیلان پرانت بھی ہے۔ گیلان پرانت ایران کے اتر میں استھت ہے۔ یہ ایسا پرانت ہے جس کے ایک اور البرز پروت شنکھلا ہے تو دوسری اور یہ کیسپین ساگر سے ملا ہوا ہے۔ گیلان کا چھیتر پھل 14,700 ورگ کلومیٹر ہے۔ گیلان پرانت کے کیندریہ نگر کا نام ارشت ہے۔
گیلان پرانت اتر میں کیسپین ساگر اور آذربائیجان پرانت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پرانت پشچم میں اردبیل، دکشن میں زنجان اور قزوین سے تتھا پورو میں مازندران پرانت سے ملا ہوا ہے۔ کیسپین سی کے کنارے سمتل اور تٹیہ کھیتر بہت ہی لمبے سمے سے موجود ہے، جو البرز تتھا تالش پہاڑوں سے نکل کر سمندر میں پرواہت ہو جانے والی ندیوں سے استتو میں آئے ہیں۔ گیلان میں کی جانے والی ادھکانش کرشی گتیویدھیاں بھی اسی کھیتر میں ہوتی ہیں تتھا ادھکانش نگر تتھا آواسیہ کھیتر بھی اسی بھاگ میں پائے جاتے ہیں۔ 3,000 کی اونچائی کے ساتھ البرز پروت پشچمی اور دکشنی گیلان میں مضبوط دیوار کی طرح موجود ہے۔
گیلان چھتر کی جلوایو میڈیٹرینین جلوایو جیسی ہے۔ یہ البرز پروت شنکھلا اور کیسپین ساگر کے کارن استتو میں آئی ہے۔ ایران کا یہ چھتر سروادھک ورشا والا نم چھتر ہے۔ آپ کے لیے یہ جاننا بھی اچت ہوگا کہ گیلان میں پورے ورش تاپمان میں کوئی بہت بڑا پریورتن نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کی بھومی بہت ہی اپجاؤ ہے، وشیش کر دھان کی کھیتی، چائے اور تمباکو کی کھیتی میں یہ پہلے نمبر پر ہے۔ ایران کے انیہ پرانتوں کے تلنا میں یہاں پر ان چیزوں کی کھیتی ادھک ہوتی ہے۔ گیلان کے نکٹ کے پہاڑ ہرے بھرے ہیں، جہاں پر گھنے جنگل پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے جنگلوں کی ایران کی ارتھ ویوستھا میں وشیش بھومکا ہے۔
گیلان کا اتہاس بہت پرانا ہے۔ اس کے بارے میں ادھک جانکاری کے لیے ہمیں اتہاسکاروں کی سہایتا لینی ہوگی۔ گیلان میں کھدائی میں ملنے والی پراچین وستوؤں کے ادھیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کا اتہاس ہزاروں ورش پرانا ہے۔ شودھ کاریوں کے پرینام بتاتے ہیں کہ اتری ایران میں ہزاروں سال پہلے سے مانو جیون کی نشانیاں موجود رہی ہیں۔ آرتھر کیتھ، ہینری فیلڈ، روما کرشمین اور ایگور مائکیلوویچ جیسے شودھکرتاؤں نے پرمانوں سے سدھ کیا ہے کہ کم سے کم 5,000 سال پہلے گیلان میں پرگتیشیل سبھیتا موجود تھی۔
कुछ विद्वानों का ये कहना है कि गिलान की सभ्यता का इतिहास लगभग 7000 वर्षों पुराना है। कुछ अन्य का मानना है कि गिलान की प्राचीन संस्कृति और कला ने अपने काल में अन्य क्षेत्रों की संस्कृतियों को भी प्रभावित किया है। गिलान के विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली खुदाई में विभिन्न रंगों के मिट्टी के बहुत से बर्तन मिले हैं। ये जो बर्तन मिले हैं उनमें से कई का संबंध 4000 वर्षों से है। ईरान के गिलान प्रांत में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले अधिकांश अवशेष हजारों वर्ष पुराने हैं। इटली के पश्चिम एशिया मामलों के एक विशेषज्ञ विलियम कुली कैन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मादहा व पारसीहा।
अपनी इस किताब में उन्होंने इस दृष्टिकोण को साबित किया है कि गिलान तथा कैस्पियन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 3000 पुरानी सभ्यता पाई जाती है और वहां के रहने वाले कई प्रकार की कलाओं से अवगत थे। अपनी किताब में वे इस ओर इशारा करते हैं कि गिलान के मार्लिक टीले तथा वहां के अमलश व दईलमान गांव में खुदाई के दौरान बहुत ही प्राचीन एवं समृद्ध अवशेष हाथ लगे हैं। उनका कहना है कि इन सारे अवशेषों का संबंध लगभग 900 वर्षों पुराना एक ही कालखंड से है।
इतिहास पूर्व गिलान के मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों पर बने डिजाइन अब तक के मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइनों में सबसे रोचक व सबसे आकर्षक हैं। जिस वस्तु ने इनको बेहतरीन रूप प्रदान किया है वो रोज कही जाने वाली स्थानीय मिट्टी की गुणवत्ता है। गिलान की इस मिट्टी में विभिन्न रूपों में ढलने की क्षमता पाई जाती है। इससे बनी हुई वस्तुएं सामान्यतः हल्की होती हैं। शीघ्र रूप धारण करने वाली और प्राकृतिक चमक रखने वाली इस मिट्टी को कम तापमान पर पकाया जाता है। गिलान के मिट्टी के बर्तनों में ध्यान योग्य बिंदु उसकी विविधता है।
गिलान की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि, पशुपालन और मत्स्य उद्योग पर आधारित है। यहाँ पर मधुमक्खी पालन का भी काम किया जाता है। यहाँ की कृषि पैदावार में चावल और चाय को प्रमुखता हासिल है, जिनकी खेती सामान्यतः गिलान, लाहिजान और रुतसर जैसे शहरों में की जाती है। गिलान के रुतबार नगर में जैतून बहुत बड़े पैमाने पर पैदा होता है। इसी प्रांत के बंदर अस्तारा, बंदर केयाशर तथा बंदर अंजली नगरों में मछली का शिकार बहुत व्यापक स्तर पर किया जाता है। गिलान में शहद की भी पैदावार व्यापक स्तर पर होती है। ये काम अधिकतर पर्वतांचलों में किया जाता है। गेहूँ, जौ, आलू, तंबाकू और कई प्रकार के फल और सब्जियां भी यहाँ पर पैदा होती हैं।
गिलान प्रांत में बहुत से हस्त उद्योग भी प्रचलित हैं। यहाँ के हस्त उद्योगों में रेशम, ऊन और धागे से बुनी हुई वस्तुओं का नाम लिया जा सकता है। गिलान प्रांत की रेशम, ऊन और धागे से बुनी हुई वस्तुओं की सुंदरता, सूक्ष्मता तथा रंगों का मेल आश्चर्यजनक होता है। हाथ से बुनी हुई इन अद्वितीय वस्तुओं के बनाने में ईरानी कलाकार महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है। विभिन्न प्रकार की जरदोजी व कढ़ाई को स्थानीय भाषा में रूदोजी कहा जाता है। रश्द नगर में प्रचलित क्रोएशिया से बनाई जाने वाली डिजाइनें भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें कुल्लाबदोजी कहा जाता है। यह हस्तकला अतीत में अधिकतर रश्द नगर में प्रचलित थी और बहुत से स्थानीय लोग इस कार्य में व्यस्त रहते थे। खेद की बात यह है कि वर्तमान समय में इसमें पहले जैसी बात नहीं रही और लगभग ये पतन की ओर बढ़ रही है।
गिलान प्रांत के सुंदर हस्त उद्योग को जिन स्थानों पर देखा जा सकता है उनमें से एक गिलान का बाजार है। गिलान के कुछ बाजार स्थायी हैं तो कुछ साप्ताहिक और कुछ मौसम के अनुसार लगते हैं, जबकि कुछ विशेष अवसरों पर होते हैं। इनमें से हर बाजार के अपने विशेष रीति रिवाज हैं और ये रीति रिवाज धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं से मिलकर बने हैं। ये बाजार क्षेत्र के विभिन्न स्थानों, गांवों और नगरों में शनिवार से शुक्रवार तक लगाए जाते हैं और इन बाजारों में स्थानीय लोगों के विभिन्न उत्पादों को पेश किया जाता है और इससे बाजारों की चहल पहल और आकर्षण और अधिक बढ़ जाती है। वर्ष के विशेष अवसरों पर ये बाजार लगते हैं। इन दिनों यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती है। लोगों की बढ़ती मांग के कारण साप्ताहिक बाजारों में खूब धूम रहती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली हर वस्तुएं हर वर्ग की आवश्यकताओं के अनुसार होती हैं।
गिलान प्रांत के स्थानीय बाजारों में स्थानीय महिलाओं की भूमिका बहुत अधिक होती है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यहाँ पर महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बाजार में सामान बेचती हैं। सब्जियां, हाथ से बुनी हुई वस्तुएं, मुर्गी, मुर्गी के अंडे, दूध, दही जैसी स्थानीय वस्तुएं इन बाजारों में बेची जाती हैं। साप्ताहिक बाजार हर सप्ताह अलग अलग क्षेत्रों में लगते हैं, जैसे शनिवार को बंदर अंजलि, रविवार को सुमिश्रा, सोमवार को खुशकीजार में ये बाजार लगते हैं।
जिस वस्तु ने गिलान के बाजारों को ईरान के केंद्रीय बाजारों से भिन्न किया है वो वस्तुओं की विविधता है। ये वे उत्पाद हैं जिन्हें स्वयं ग्रामवासी अपने हाथों से बनाते हैं और उन्हें बहुत ही उचित मूल्य पर बेचने के लिए रखा जाता है। गिलान प्रांत के स्थानीय बाजारों में बेची जाने वाली सब्जियों में बोई जाने वाली सब्जियां, स्वयं उगने वाली सब्जियां, विभिन्न प्रकार के रसीले फल, जैतून, बागला, लौकी, मछली, चावल, स्थानीय लुंगी जिसे चादर शब कहा जाता है, ऊनी मोजे, दही, स्थानीय मट्ठा और विभिन्न प्रकार की स्थानीय लोहे की बनी हुई चीज़ों का नाम लिया जा सकता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम ईरान भ्रमण, जिसे पेश कर रहे थे मोहम्मद मेहदी और मरियम मेहदादी। आशा इस सभा के प्रोग्राम आपको पसंद आए होंगे। प्रोग्राम के बारे में आप अपने विचार हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, hindi@ws.irib.ir। व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 0098-9035065492। इसी के साथ ये सभा समाप्त होती है। मोहम्मद अली कुम्मी और साथियों को इजाजत दीजिए। शुभरात्रि। खुदा हाफिज़।